एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हम सबके लिए सबसे ज्यादा निजी है, फिर भी सबसे ज्यादा रहस्यमयी भी। चेतना यानी कॉन्शियसनेस।
हाँ, ये एहसास कि मैं हूँ, ये जो दुनिया हम अनुभव करते हैं, ये सब कहाँ से आता है, कैसे बनता है?
नमस्कार, मैं हूँ मेजबान एक
और मैं हूँ मेजबान दो।
और आज हमारे सामने है ज़ोल्टन टोरी की एक बहुत ही दिलचस्प किताब, द कॉन्शियस माइंड।
हाँ, और ये किताब मतलब सीधे सीधे उस पहेली को सुलझाने का दावा करती है जिसने सदियों से, आप सोचिए, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों सबको उलझा रखा है।
बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई क्या कहते हैं फिलोसॉफिकल बहस नहीं है। चेतना को समझना तो एक तरह से खुद को समझना है ना?
इतनी बातें हो रही हैं तो ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है, क्या मशीनें कभी सच में सचेत हो पाएंगी?
हाँ, और यही टोरी का काम दिलचस्प हो जाता है। वो चेतना को कोई कोई अलौकिक चीज मानने के बजाय उसे हमारे दिमाग और खासकर भाषा के विकास से जोड़कर देखते हैं।
बिल्कुल, एक बहुत ही जमीनी, एक बायोलॉजिकल नजरिया कह सकते हैं।
तो फिर इस नज़रिए के पीछे जो शख्स हैं, ज़ोल्टन टोरी, उनके बारे में जानना तो बनता है। उनका जीवन भी उनके विचारों जितना ही असाधारण था।
हाँ, हंगेरियन मूल के थे, बाद में ऑस्ट्रेलिया में बसे, 1928 में जन्मे और 2020 में उनका देहांत हुआ।
और दिलचस्प बात यह है, जैसे आपने कहा, कि वो कोई टिपिकल न्यूरोसाइंटिस्ट नहीं थे शुरू में।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो नाटककार थे, भाषाविद थे, एक स्वतंत्र विचारक थे। हाँ, बाद में उन्होंने साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में डॉक्टरेट जरूर की।
तो ये जो अलग अलग फील्ड्स का अनुभव था, ये उन्हें एक अनोखा पर्सपेक्टिव देता है ना?
यकीनन, लेकिन उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो उनके काम के लिए शायद सबसे अहम साबित हुआ।
आप उनकी दुर्घटना की बात कर रहे हैं?
हाँ, सिर्फ 21 साल की उम्र में एक लैब एक्सीडेंट में उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई।
सोचकर भी मुश्किल लगता है, पूरी दुनिया अचानक अंधेरी हो गई।
हाँ, लेकिन टोरी के लिए ये सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, अजीब तरह से ये उनके लिए चेतना को समझने का एक अंदरूनी रास्ता बन गया।
कैसे? मतलब जब बाहर की दुनिया दिखनी बंद हुई
तो अंदर की दुनिया पर निर्भरता बढ़ गई। उन्हें दुनिया को समझने के लिए, उसमें चलने फिरने के लिए पूरी तरह से अपने दिमाग में ही सब कुछ विजुअलाइज करना पड़ा, एक मेंटल मॉडल बनाना पड़ा।
बिल्कुल, जैसे दिमाग में ही एक 3D नक्शा बना लिया हो उन्होंने।
हाँ, कुछ वैसा ही। और इसी अनुभव ने उन्हें चेतना कैसे काम करती है इसका एक बहुत गहरा फर्स्ट हैंड नजरिया दिया। उन्होंने खुद महसूस किया कि दिमाग भाषा और तर्क का इस्तेमाल करके असलियत का एक आंतरिक मॉडल कैसे बनाता है, कैसे उसे मेंटेन करता है।
तो उनकी किताब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उनके गहरे व्यक्तिगत अनुभव और दशकों के गंभीर इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन का निचोड़ है। भाषा विज्ञान, न्यूरोसाइंस, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, सब कुछ।
चलिए, तो अब सीधे किताब पर आते हैं। द कॉन्शियस माइंड आखिर कहना क्या चाहती है? इसका सबसे मूल दावा क्या है?
मूल दावा यह है कि चेतना, कॉन्शियसनेस, कोई जादुई धुआं या आत्मा जैसी चीज नहीं है।
अच्छा, तो फिर क्या है?
ये हमारे दिमाग की जटिल बनावट का एक स्वाभाविक नतीजा है, एक जैविक चीज है, एक विकासवादी अनुकूलन, अडेप्टेशन है, एक खास तरह का उपकरण जो एक खास काम करता है।
एक उपकरण, ठीक है। और इसके पीछे मुख्य विचार क्या है? आपने कहा दो स्तंभ हैं इसके।
हाँ, दो मुख्य आइडियाज हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं।
हाँ।
पहला तो ये कि चेतना का जो कोर मैकेनिज्म है वो भाषा है।
भाषा मतलब बोलने लिखने वाली भाषा।
हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा, भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, वो हमारे सोचने का, हमारे विचार का ढांचा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कह लीजिए।
अच्छा, ये कैसे?
भाषा हमें अभी और यहीं के पल से आज़ाद करती है। हम अतीत के बारे में सोच सकते हैं, भविष्य की योजना बना सकते हैं, और सबसे ज़रूरी, अपने मन में ही एक वर्चुअल दुनिया या ऑफलाइन सिम्युलेटर बना सकते हैं।
दिलचस्प। और दूसरा स्तंभ?
दूसरा है दिमाग की सेल्फ रिप्रेजेंटेशन की क्षमता, यानी आत्म प्रतिनिधित्व।
सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
हाँ, मतलब ये कि हमारा दिमाग सिर्फ बाहरी दुनिया का मॉडल नहीं बनाता, जैसे पेड़, कुर्सी, दूसरा इंसान, वो अपनी अंदरूनी हालत का, अपनी खुद की प्रक्रियाओं का भी मॉडल बना सकता है। वो एक तरह से खुद को ही ऑब्जेक्ट की तरह देख सकता है।
ओके, जैसे आईने में खुद को देखना पर मानसिक स्तर पर।
हाँ, कुछ वैसा ही, खुद की निगरानी करना, यही वो चीज है जिससे सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता पैदा होती है।
तो अगर इन दोनों को जोड़ें, भाषा और सेल्फ रिप्रेजेंटेशन,
तो तस्वीर ये बनती है कि भाषा यानी शब्द, व्याकरण, सिंटैक्स वो औजार हैं जो दिमाग को एक कमाल की सेल्फ रिप्रेजेंटेशन वाली क्षमता देते हैं, और इसी से वो जटिल आंतरिक सिमुलेशन, वो वर्चुअल दुनिया बना पाता है जिसमें हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, प्लानिंग करते हैं।
और चोरी के हिसाब से यही
चेतना है।
हाँ,
उनके अनुसार ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है जो हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने में मदद करने के लिए इवॉल्व हुआ। एक जबरदस्त फायदा।
चलिए किताब के तर्कों को थोड़ा और खोलते हैं, जैसे वो किताब में करते हैं। शुरुआत में टोरी किस चीज पर फोकस करते हैं?
वो पहले चेतना के अध्ययन का इतिहास देखते हैं और उस मशहूर कठिन समस्या या हार्ट प्रॉब्लम पर आते हैं।
हार्ट प्रॉब्लम यानी ये सवाल कि भौतिक दिमाग से व्यक्तिपरक अनुभव, सब्जेक्टिव फीलिंग कैसे पैदा होती है, लाल रंग लाल क्यों लगता है।
बिल्कुल, और टोरी शुरू में ही ड्यूअलिज्म, मन और शरीर अलग हैं, और मिस्टिसिज्म, ये एक रहस्य है, को खारिज कर देते हैं। उनका स्टैंड क्लियर है, चेतना एक बायोलॉजिकल चीज है जिसे समझा जा सकता है।
और उनका तरीका क्या है समझने का?
वो कहते हैं, ये मत पूछो चेतना क्या है, ये पूछो चेतना क्या करती है, उसका फंक्शन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है।
एक फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। तो फिर अगला सवाल, ये विकसित ही क्यों हुई, इसकी जरूरत क्या थी?
हाँ, फिर वो एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट पर आते हैं। वो हमें हमारे पूर्वजों के जीवन में ले जाते हैं। सोचिए, शुरुआती इंसान, बड़े जानवरों का शिकार करना है, झुंड में रहना है, सामाजिक रिश्ते निभाने हैं, औजार बनाने हैं,
ये सब तो काफी जटिल काम है, सिर्फ पल में जी कर तो नहीं हो सकते।
एग्जैक्टली, सिर्फ बाहरी दुनिया पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से काम नहीं चलेगा। दिमाग को सिर्फ ऑनलाइन मोड में रहने से ज्यादा कुछ चाहिए था।
ऑनलाइन मोड मतलब जो बस बाहरी जानकारी ले रहा है और रिएक्ट कर रहा है,
मतलब बाहरी दुनिया से थोड़ा कटके अपनी मेमोरी, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके मन में ही चीजों को चलाना, योजना बनाना, अलग अलग सिनेरियो सोचना, अगर ऐसा किया तो क्या होगा, ये वाला मोड, एक तरह का मेंटल सिम्युलेटर।
अच्छा, जैसे हम किसी जरूरी मीटिंग से पहले मन में ही पूरी बातचीत सोच लेते हैं।
बिल्कुल, यही है ऑफलाइन प्रोसेसिंग।
और दिमाग के ऑनलाइन मोड के बारे में टोरी क्या कहते हैं? वो तो जरूरी है ही।
हाँ, बिल्कुल जरूरी है, वो दिमाग का बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंख, कान, नाक, त्वचा से लगातार जानकारी आ रही है, थैलेमस, कॉर्टेक्स जैसे हिस्से इसमें लगे हुए हैं। ये तत्काल जागरूकता या सेंशियंस है, और ये क्षमता हम कई जानवरों के साथ साझा करते हैं।
लेकिन टोरी का जोर इस बात पर है कि ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग, ये कच्ची जागरूकता वो नहीं है जिसे हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस कहते हैं, है ना?
कि इनपुट से आजाद होकर अपने अंदर की जानकारी पर कैसे काम करता है।
और यहीं पर उनका मुख्य तर्क आता है, चेतना का सॉफ्टवेयर।
हाँ, और यहाँ वो अपने दोनों हथियार लाते हैं, भाषा और सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। पहले भाषा को देखते हैं।
भाषा कैसे ऑफलाइन मोड को संभव बनाती है?
शब्द सिर्फ लेबल नहीं है, वो कॉन्सेप्ट्स के, जानकारी के बड़े बड़े पैकेट्स के प्रतीक है। जैसे पेड़ शब्द सुनते ही सिर्फ एक इमेज नहीं आती, उससे जुड़ी सारी जानकारी, पत्तियां, जड़ें, ऑक्सीजन, लकड़ी, सब एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन असली जादू है सिंटैक्स यानी व्याकरण, वाक्य बनाने के नियम। ये हमें प्रतीकों, शब्दों को नए नए तरीकों से जोड़ने की ताकत देता है, अनंत संभावनाएं खुल जाती हैं।
जैसे वो मैमथ वाला उदाहरण आपने दिया था।
हाँ, वही क्लासिक उदाहरण। अगर हम कल चट्टान पर से मैमथ का पीछा करते हैं तो हमारे पास सर्दियों के लिए भोजन होगा, ये वाक्य सोचिए।
भविष्य की बात,
शर्त,
नतीजा।
हाँ,
ये मन में बना एक छोटा सा सिमुलेशन है।
ये बिना भाषा और व्याकरण के संभव ही नहीं है।
इसी भाषाई सिस्टम से दिमाग, वो आंतरिक मॉडल, वो वर्चुअल रियलिटी बनाता है जिसमें हम लगातार घूमते रहते हैं, सोचते रहते हैं। हमारी चेतना की जो धारा है वो इसी आंतरिक दुनिया में नेविगेट करना है।
माल है।
और फिर इसमें सेल्फ रिप्रेजेंटेशन कैसे फिट होता है?
चेतना तब पूरी तरह से उभरती है, टोरी कहते हैं, जब दिमाग सिर्फ बाहरी दुनिया का मॉडल बनाना नहीं सीखता, बल्कि अपनी आंतरिक अवस्थाओं का, अपनी सोच का भी मॉडल बनाने लगता है।
खुद के बारे में सोचना।
हाँ, रिकर्सिव सेल्फ मॉनिटरिंग, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ये जो मेटाकॉग्निशन है, ये इसी क्षमता से आता है। दिमाग अपनी ही गतिविधि को देख रहा है एक तरह से।
तो अब कनेक्शन साफ दिख रहा है, भाषा वो टूल किट है, शब्द व्याकरण जो दिमाग को सेल्फ रिप्रेजेंटेशन करने और उस जटिल आंतरिक दुनिया को बनाने के लिए चाहिए।
बिल्कुल, और यही ऑफलाइन चिंतनशील मोड जो भाषा और सेल्फ रिप्रेजेंटेशन पर आधारित है, हमें बाकी जानवरों की ऑनलाइन जागरूकता से अलग करता है।
वाह, और इस सबका सबसे गहरा नतीजा क्या निकलता है? मैं का एहसास, हमारा सेल्फ।
हाँ, स्व यानी द सेल्फ। और यहाँ टोरी का कहना थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। वो कहते हैं कि स्व कोई पहले से मौजूद आत्मा या कोई ठोस चीज नहीं है।
नहीं,
तो फिर क्या है?
ये हमारे भाषाई दिमाग द्वारा लगातार रची और मेंटेन की जाने वाली एक कहानी है, एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट।
एक कहानी? मतलब मैं एक कहानी हूँ?
एक तरह से हाँ। दिमाग अतीत की यादों और भविष्य के अनुमानों को जोड़कर एक निरंतर कहानी बुनता है, और उस कहानी का हीरो कौन होता है? मैं।
ये तो काफी रेडिकल आइडिया है। और फिर फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा का क्या?
वो भी इसी से जुड़ा है। टोरी के अनुसार फ्री विल कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है जो फिजिक्स के नियमों को तोड़ दे।
तो फिर?
ये बस हमारे दिमाग की अपने उस ऑफलाइन सिमुलेटर का इस्तेमाल करके किसी स्थिति में एक्शन के कई संभावित तरीकों को जनरेट करने और उनका मूल्यांकन करने की क्षमता है। हम मन में सोचते हैं, ये करूं या वो करूं, इसके क्या फायदे नुकसान होंगे?
हाँ, करते हैं।
तो ये जो हमें चुनने का एहसास होता है, ये इसी विचार विमर्श की प्रक्रिया का व्यक्तिपरक अनुभव है।
अच्छा, तो ये चुनने की फीलिंग ही फ्री विल है, ना कि कोई बाहरी ताकत।
टोरी के मॉडल में तो यही है।
किताब के आखिर में टोरी इन सब बातों के क्या निहितार्थ बताते हैं?
वो अपनी थ्योरी के बड़े इम्प्लीकेशंस पर बात करते हैं। वो फिर से जोर देते हैं कि पशुओं की जागरूकता सेंटियंस और इंसानी चेतना कॉन्शियसनेस में फर्क है।
और एआई के बारे में?
हाँ, एआई पर भी उनका मानना है कि सच्ची इंसान जैसी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई सिर्फ ज्यादा प्रोसेसिंग पावर या डेटा से नहीं बन सकती।
तो कैसे बनेगी?
उसे दुनिया का द ग्राउंडेड भाषा आधारित आंतरिक मॉडल बनाना सीखना होगा, और शायद खुद का भी प्रतिनिधित्व करना सीखना होगा, जो कि अभी बहुत दूर की कौड़ी लगता है।
और उनका फाइनल निष्कर्ष क्या है चेतना के बारे में?
उनका निष्कर्ष एक तरह से बहुत आशावादी है। वो कहते हैं, चेतना कोई अनसुलझी पहेली नहीं रह गई है, ये दिमाग की एक शानदार ट्रिक है, भाषा और सेल्फ रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करके खुद से ही बात करने की, एक आंतरिक दुनिया बनाने की, और इसी आंतरिक दुनिया ने हमारी प्रजाति को बाहरी दुनिया पर एक तरह से विजय पाने में मदद की।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो कुछ मुख्य बातें या संदेश क्या निकलते हैं इस किताब से?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे अहम संदेश तो यही है, चेतना को एक रहस्य की तरह देखना बंद करें। ये एक जैविक चीज है, एक टूल है जिसका एक फंक्शन है, और उसे समझा जा सकता है।
ठीक है, दूसरा?
दूसरा, भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, वो हमारे सोचने का, हमारी चेतना का आधार है, या कहें सेल्फ रिप्रेजेंटेशन चेतना की जड़ है, और भाषा उसे संभव बनाती है। ये दोनों जुड़े हुए हैं।
बिल्कुल। तीसरा क्या होगा?
तीसरा कि हमारा दिमाग एक कमाल का वर्चुअल रियलिटी जनरेटर है, एक आंतरिक मॉडल बनाने वाला यंत्र।
और टोरी का अपना जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
हाँ, और ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी दिखता है। जैसे आपने कहा, भारत में कोई बड़ा फंक्शन प्लान करना, शादी हो, त्योहार हो, कितने सारे वेरिएबल्स होते हैं, कितने लोगों का ध्यान रखना होता है, ये सब क्या है? ये हमारे दिमाग में चलने वाला एक जटिल ऑफलाइन सिमुलेशन ही तो है। हम मन में ही सब कुछ चलाकर देखते हैं।
सही कहा। चौथा पॉइंट?
चौथा कि सामान्य जागरूकता ऑनलाइन और आत्मचिंतन वाली चेतना ऑफलाइन में फर्क करना बहुत जरूरी है। हो सकता है बहुत से जानवर जागरूक हों, पर शायद सचेत उस तरह से नहीं जैसे हम इंसान हैं, अपनी सोच पर सोच सकने वाले।
ज्ञान एक कहानी है।
हाँ, एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट जो लगातार बनता रहता है, बदलता रहता है। हम सब अपने बारे में कहानियां बनाते हैं और सुनाते हैं।
किताब में कुछ ऐसी बातें या कोट्स हैं जो इन आइडियाज को दिमाग में बैठा देते हैं, जरूरी नहीं शब्दशः हो, पर उनका सार।
हाँ बिल्कुल। जैसे पहला विचार, जिसका सार ये है, चेतना कोई चमत्कार नहीं जिस पर हैरान हुआ जाए, बल्कि समझने के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है। ये दिमाग की अपनी ही गतिविधि को रिप्रेजेंट करने का नतीजा है, और इसका मैकेनिज्म भाषा और सेल्फ रिप्रेजेंटेशन है। ये सीधा फंक्शन पर फोकस लाता है।
और
दूसरा, ये दिमाग के दो मोड हैं, ऑनलाइन जो बाहरी दुनिया से सीधे जुड़ा है, जानवरों में भी है, और ऑफलाइन जो इंसानों की खासियत है, भाषा पर आधारित है और हमें वर्तमान से आजाद करता है। ये चेतना के लेवल्स को साफ करता है।
और वो स्व वाला?
हाँ, तीसरा, स्व कोई आत्मा जैसी चीज नहीं, ये उस लगातार चलती कहानी का हीरो है जो दिमाग खुद को सुनाता रहता है। ये दुनिया के संबंध में अपने होने का दिमाग का अपना मॉडल है। ये पहचान को एक डायनामिक निर्मित चीज की तरह दिखाता है।
ये सब सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, पर इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? क्या कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है?
हाँ, कई हैं। सबसे पहले तो मनोविज्ञान और मेंटल हेल्थ में सोचिए।
जैसे?
कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT का तो आधार ही यही है। हम अपने सोचने के पैटर्न, अपनी अंदरूनी कहानियों को पहचानते हैं और उन्हें बदलते हैं, जिससे हमारी भावनाएं और व्यवहार बदलते हैं। ये बिल्कुल टोरी के मॉडल से मेल खाता है।
हाँ, ये तो है। और ट्रॉमा को समझने में भी मदद मिल सकती है।
बिल्कुल। ट्रॉमा में शायद वो आंतरिक सिमुलेशन ठीक से काम नहीं करता या अतीत में अटक जाता है। और माइंडफुलनेस वो क्या है? वो एक तरह से अपने उस आंतरिक सिमुलेटर को, अपनी सोच की धारा को बिना जज के देखना ही तो है।
अच्छा, कनेक्शन है।
और शिक्षा के क्षेत्र में?
शिक्षा में भी।
असली सीखना सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि किसी विषय का एक मजबूत कनेक्टेड आंतरिक मॉडल बनाना है। और अगर हम छात्रों को मेटाकॉग्निशन सिखाएं, यानी अपने सोचने के तरीके के बारे में सोचना, तो वो ज्यादा प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं।
क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बारे में क्या?
जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, नए आइडियाज सोचते हैं, तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? हम अपने ऑफलाइन मेंटल वर्कस्पेस में क्या हो अगर, व्हाट इफ वाले ढेरों सिमुलेशन चला रहे होते हैं।
हाँ, ये तो सही है।
और एआई वाली बात, ट्यूरिंग का सिद्धांत ये समझने में मदद करता है कि क्यों आजकल के चैटबॉट इतने इंप्रेसिव होकर भी सचेत नहीं है। उनमें वो दुनिया का ग्राउंडेड आंतरिक मॉडल और सेल्फ रिप्रेजेंटेशन वाली बात गायब है।
और सबसे जरूरी, शायद व्यक्तिगत स्तर पर, पर्सनल ग्रोथ में।
बिल्कुल, ये समझना कि हमारी दुनिया की समझ और हमारा स्व भी हमारे दिमाग के बनाए हुए मॉडल हैं, ये हमें एक गजब की ताकत देता है।
कैसे?
क्योंकि अगर ये मॉडल हैं तो ये परफेक्ट नहीं है, इन्हें जांचा जा सकता है, सवाल किया जा सकता है और बदला भी जा सकता है। हम अपनी कहानी को कुछ हद तक फिर से लिख सकते हैं।
ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो एक चीज सबसे ज्यादा उभर कर आई वो है भाषा का महत्व। सिर्फ बातचीत के लिए नहीं, बल्कि सोचने और चेतना के निर्माण के लिए। हम अक्सर इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं।
हाँ, ये बात तो है। और मेरे लिए वो स्व का एक कहानी होना, ये विचार बहुत गहरा है। थोड़ा अनसेटलिंग भी, पर साथ ही आजादी देने वाला भी, कि हम अपनी पहचान को इतना फिक्स्ड ना समझें।
और ये भी कि टोरी ने ये सब सिद्धांत सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि अपने जीवन के अनुभव, अपने अंधेपन से जूझते हुए विकसित किए हैं। ये उनके विचारों को एक अलग ही वजन देता है।
बिल्कुल।
तो श्रोताओं के विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर हमारा सचेत स्व वाकई भाषा और सेल्फ रिप्रेजेंटेशन से बनी कहानी है, तो इस कहानी पर हमारा कितना नियंत्रण है? क्या हम सच में से बदल सकते हैं? और बदलने का मतलब क्या है?
या फिर ये सोचिए, क्या कोई मशीन, कोई एआई कभी सचमुच इस तरह का आंतरिक सिमुलेशन और सेल्फ अवेयरनेस हासिल कर पाएगी? और अगर हाँ, तो फिर इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? बहुत गहरे सवाल हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।